सुरेंद्र चेतल, रोपड़, पंजाब। पूछते हैं, सदगुरु आपको कोटि कोटि प्रणाम, कैसे जाने कि सत्य क्या है। लाओत्सो चीन का संत हुआ गौतम बुद्ध के काल में। वहाँ के राजा ने उससे पूछा कि आपने क्या जाना। लाओत्सो ने कहा कि मैंने सत्य को जाना। अपने भारतवर्ष में परमात्मा का नाम सच्चित आनंद है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा आनंद है। परमात्मा सत्यम है, परमात्मा शिवम है, परमात्मा सुंदरम है। सत्य कॉमन है, सत्य है परमात्मा, और सत्य का अर्थ है शाश्वत है परमात्मा। ये और बात है कि शाश्वत की ही धुरी पर काल का पहिया घूमता है। जड़ और चेतन, चेतन शाश्वत है, जड़ परिवर्तनशील है। परमात्मा शाश्वत है, परमात्मा सत्य है। ऐसा कहा लाओत्सो ने कि मैंने उस सत्य को जाना जो शाश्वत है। हम जो भी जानते हैं वो सब असत्य है, वो सब परिवर्तनशील है, वो सब माया है। बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, जान ले वो भवसिंधु के पार है। अष्टावक्र से पूछते हैं जनक कि भवसिंधु को पार हम कैसे जा सकते हैं, कैसे जाने कि सत्य क्या है। कहते बुद्धि पर्यंत माया है, जहाँ तक बुद्धि जाती है सब माया है, इसलिए बुद्धि से सत्य का कोई संबंध है नहीं। तो एक बात तो पक्की है कि सत्य को कैसे नहीं जान सकते, बुद्धि से नहीं जान सकते। और अधिकतर लोग बुद्धि से ही सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए लाओत्सो को राजा ने कहा कि जब सत्य को तुमने जाना लाओत्सो, तो हमें बता दो तो हम भी जान लें। लाओत्सो ने कहा कि नहीं, बुद्धि से नहीं जान सकते, अनुभव से जान सकते हो, बुद्धि से नहीं। राजा ने बहुत कोशिश की, बार बार बुलाता रहा कि हमें बताओ। एक रात को भाग खड़ा हुआ, सोचा कि भारत चलते हैं, वहाँ लोग परेशान नहीं करते हैं संतों को। लेकिन भारत और चीन की सीमा पर पकड़ा गया। चुंगी अधिकारी ने कहा कि यहाँ का नियम है, जो भी विदेश जाता है उसको चुंगी देनी होती है, टैक्स देना पड़ता है। लाओत्सो ने कहा कि मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं देने को। घुड़सवार दौड़ाए गए राजा के पास कि ऐसा एक फ़कीर, लाओत्सो नाम है उसका, भागा जा रहा है, चुंगी देने को कहते हैं, तो कहता है कि हम तो फ़कीर हैं, क्या किया जाए। राजा ने कहा कि चीन की सबसे बड़ी संपदा लाओत्सो के पास है, और उसको तो चुंगी देनी ही पड़ेगी, बाकी तो किसी की चुंगी माफ़ भी की जा सकती है। जो धनवान व्यक्ति इस देश से जाता है उसको तो चुंगी देनी पड़ती है, और लाओत्सो इस देश का सबसे धनी व्यक्ति है। देखने को उसके पास नहीं है, मगर उसके पास संपदा सबसे बड़ी है, और उसकी चुंगी यही है कि जिस सत्य को जाना उसको बताना पड़ेगा। उस चेक पोस्ट पर बैठ कर के लाओत्सो ने बताने की कोशिश की उस, और उसके पूरे वचन एक किताब में है, ताओ ते किंग, ओशो की प्रवचन माला, ताओ उपनिषद, लाओत्सो के उन्हीं वचनों पर है। और उसमें सूत्र उसने लिखे हैं, और पहला सूत्र है, परम सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और जो कहा जा सकता है वो परम सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, केवल इशारे किए जा सकते हैं, मगर अनुभव किया जा सकता है। जब ध्यान समाधि में आप आओगे तो उस समय जानोगे कि ओंकार क्या है, और ओंकार ही सत्य है, वो परिवर्तनशील नहीं है। और ओंकार के एक पक्ष को अभी जानोगे ध्यान समाधि में, उसका नाद क्या है। लेकिन परमात्मा के 21 आयाम हैं, जो ओशोधारा में हम आपको अनुभव कराते हैं। निराकार है परमात्मा, मगर कहने से तो नहीं होता निराकार है। वैसे तो आप सब सुनते आए हो, गीता में पढ़ते आए हो, निर्गुण है, निराकार है, मगर कैसे निराकार है, अनुभव में आना चाहिए कि निराकार है। उसी तरह ओंकार, एक ओंकार सत्यनाम, गुरु नानक देव जी ने कहा, हमने सुना, लेकिन तुम जब तक नहीं जानोगे कि वह दिव्य नाद है, तब तक कैसे पता है। वैसे ही नूर है परमात्मा, प्रकाश है, तो सुनी सुनाई बात है। तुम जानो, निर्ति समाधि में आओगे तो उसको जानोगे, अमृत समाधि में जानोगे कि परमात्मा सत्य है, परमात्मा अमृत है, परमात्मा शाश्वत है। ये बात आप जानोगे चौथे तल की समाधि। फिर आगे के डायमेंशन जानोगे, ऊर्जा समाधि में जानोगे कि परमात्मा ऊर्जा है, परमात्मा उमंग है, परमात्मा शक्ति है, ये जानोगे ऊर्जा समाधि में। दिव्य समाधि में जानोगे कि परमात्मा दिव्य स्वाद है, दिव्य गंध है, दिव्य कुमारी है, नाम कुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रात। कैसे पता? तुम जानो परमात्मा की शराब पी करके जरा झूमो, तब पता चलेगा कि परमात्मा कुमारी है, परमात्मा दिव्य स्पर्श है। आनंद चैतन्य समाधि में आओगे कि परमात्मा चित्त है, सच्चित आनंद। चित्त अभी नहीं, अभी तो सुनी सुनाई बात है। आनंद समाधि में आकर जानोगे कि परमात्मा आनंद है। प्रेम समाधि में आके जानोगे कि परमात्मा प्रेम है। जीसस के वचन तो है गॉड इज लव, लेकिन इससे तो परमात्मा के प्रेम तत्व का ज्ञान नहीं होता। ऐसे तो सुना है कि परमात्मा अद्वैत है, कैसे पता परमात्मा अद्वैत है? सब परमात्मा ही है, कैसे पता? अनुभव करो अद्वैत समाधि में आकर। परमात्मा असीम है, सुना है तुमने, कैसे पता असीम है? सुनी सुनाई बात है। जानो कैवल्य समाधि में आकर के परमात्मा असीम है, अनबॉर्डर्ड कॉन्सियसनेस। ऐसे ही जब तुमने सुना है कि परमात्मा अखंड है, कैसे पता? निर्वाण समाधि में आकर आ जाओगे कि परमात्मा अखंड है, अनुभव करोगे। ऐसे तुमने उपनिषद के वचन पढ़े हैं, परमात्मा अचल है, वो चलता नहीं, कैसे पता अचल है? सहज समाधि में आके जानोगे परमात्मा अचल है। और परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, सुंदर है परमात्मा, कैसे पता कि सुंदर है परमात्मा? ये आओगे परमहंस समाधि में, 14वीं सहज समाधि में बल्कि जानोगे परमात्मा सुंदर है। फिर परमात्मा शिव है, मंगलमय है, कैसे पता? अब जब तक अनुभव न हो जाए तब तक कैसे पता हो? तूफान लाता है, सुनामी लाता है, इतने लोग मरते हैं, कैसे पता परमात्मा मंगलमय है? इतने बैक्टीरिया, इतने वायरस, इतना मलेरिया, कैसे पता कि परमात्मा मंगलमय है? इसको जानना होगा, इसको अनुभव करना होगा। तो याद रखना, अनुभव से जाना जाता है परमात्मा को, और सत्य भी परमात्मा का एक स्वरूप है, चर्चा से नहीं जान सकते। उसको जानने का उपाय है, लेकिन कहने से, क्योंकि कहोगे तो बुद्धि से ही तो कहोगे, बुद्ध पुरुष भी अगर कहेगा तो बुद्धि से ही कहेगा, और बुद्धि से जब जाना ही नहीं जा सकता तो बुद्धि से कहा कैसे जा सकता है? लेकिन इशारे किए जा सकते हैं। सारे धर्म ग्रंथ उन लोगों के वचन है जिन्होंने जाना, उन्होंने धर्म ग्रंथ के माध्यम से प्यास पैदा की है, बस संकेत किए हैं। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि उन्होंने सत्य को जाना है। श्रुति विभिन्ना स्मृति च भिन्ना, सुनो, यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि सत्य क्या है, कैसे जाने, धर्म का तत्व क्या है, कैसे जाने, क्या है, क्या श्रुतियों से, क्या स्मृतियों से, क्या वेद से, क्या उपनिषद से, क्या गीता से, क्या पुराण से, कि कुरान से? कहता है युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म का ज्ञाता युधिष्ठिर कहता है, नहीं यक्ष, श्रुति विभिन्ना स्मृति च भिन्ना नएको मुनि अस्य वचनम प्रमाणम। श्रुतियाँ भिन्न भिन्न बात कहती हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न बात कहती हैं, सारे धर्म ग्रंथ भिन्न भिन्न बात करते हैं। नएको मुनि अस्य वचनम प्रमाणम, कोई भी ऐसा मुनि नहीं है, ऋषि नहीं है जिसका वचन प्रामाणिक हो। लो, सारे धर्म ग्रंथ व्यर्थ हो गए। फिर सुर स्वयं महर्षि व्यास ने महाभारत लिखा है और ये बात कही है, जिन्होंने चारों वेद, 108 उपनिषद और इतने धर्म ग्रंथों का संकलन किया, वे महर्षि व्यास कहते हैं, नएको मुनि यस्य वचनम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपन्था। क्योंकि धर्म का तत्व भीतर निराकार की गुफा में स्थित है, इसलिए महापुरुष उसको जान करके जिस मार्ग पर चलते हैं वही प्रामाणिक है। महापुरुष प्रामाणिक है, लेकिन महापुरुष का वचन प्रामाणिक नहीं है। मैं जो बातें तुमसे कह रहा हूँ, ये वचन तुम्हारा सत्य है, मगर परम सत्य नहीं है। कल आप ध्यान समाधि में आओगे, कुछ अब यही सत्य नहीं रहेगा, कल कुछ और तुम्हारा सत्य। हर व्यक्ति का सत्य अलग अलग होता है, लेकिन परम सत्य एक ही होता है। परम सत्य शाश्वत, पर सत्य तात्कालिक है, संतों के कहने का ढंग देशकालिक है। डॉक्टर के पास बैठे हो, कुछ लोगों के लिए कहे कि आप मिठाई पियो, मिठाई खाओ, और चाय मंगा लेगा, चाय पियो। वहीं उसका डायबिटिक पेशेंट बैठा है, इनके लिए नमकीन लाओ। क्यों क्यों भाई, वो क्यों नहीं मिठाई खा सकता? जो डायबिटिक नहीं है उसके लिए मिठाई सत्य है, और जो डायबिटिक है उसके लिए नमकीन सत्य है। वहीं पर भेदभाव कर दिया। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का सत्य अलग अलग है। और सत्य क्या है? सत्य वो है जो तुम्हें कल्याण के मार्ग पर ले जाए, जो शिवम के मार्ग पर ले जाए, जो सुंदरम के मार्ग पर ले जाए। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है परमात्मा है? गौतम बुद्ध कहते हैं अगर है तो क्या करोगे? बोला कि अगर परमात्मा है तो करना क्या, फिर अपना कुछ भी नहीं करेंगे, चादर तान करके सो जाएंगे। बोला नहीं, परमात्मा नहीं है, जाओ। दोपहर में दूसरा व्यक्ति आता है, क्या परमात्मा है? गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर मैं कहूँ नहीं है तो क्या करोगे? बोला क्या करूँ, करना क्या, फिर चोरी करूँगा, डकैती करूँगा, मर्डर करूँगा, कोई देखने वाला ही नहीं। बुद्ध ने कहा नहीं, परमात्मा है। शाम को तीसरा व्यक्ति आता है, पूछता परमात्मा है कि नहीं? बुद्ध ने कहा मैं कहूँगा है तो क्या करोगे, और मैं कहूँगा नहीं है तो क्या करोगे? बोला करना क्या है, आप बुद्ध पुरुष हैं, आप जो कह लेंगे मान लूँगा, चादर तान के सो पड़ जाऊँगा। बोला वो है भी और नहीं भी है, तुम जाके खोजो। शाम को आनंद उनका पैर दबा रहा है और मन नहीं लग रहा उसका। बुद्ध ने कहा क्या बात है, आज बहुत अन्य मनस्क से लग रहे हो। आनंद ने कहा कि आपके कारण, आपने तीन लोगों ने एक ही सवाल पूछा और आपने तीनों का अलग अलग जवाब दिया। बुद्ध ने कहा नहीं, मैंने तीनों को एक ही जवाब दिया। पहली बात तुम क्यों परेशान हो, वो उन तीनों का सत्य था, तुम्हारा सत्य नहीं है। लेकिन आनंद ने कहा लेकिन मैंने तो सुना ना, आपने मेरे लिए नहीं कहा, मगर मैं तो प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ आपका, तो मैंने तो तीनों बातें सुनी। बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैंने तीनों को एक बात कहा, एक ही बात कही, तीनों का सत्य कहा, जैसा देखा वैसा कहा। जिसको कहा कि, जिसने कहा कि चोरी करेंगे डकैती करेंगे, उसको कहा कि है खोजो। जो कहा कि हम क्या करेंगे, पड़ जाएंगे सब परमात्मा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो राम है, हमें क्या करना है? अभी आलस और तमस से ग्रस्त हो जाएगा, तो मैंने कहा खोजो। और तीसरे को भी कहा, वो है भी और नहीं भी है, तुम खोजो। तीनों को एक ही बात कही, तीनों का जो सत्य था वही कहा। तो एक बात याद रखना, परम सत्य तो एक ही है, लेकिन सत्य वो है जो परम सत्य की दिशा में तुमको प्रेरित करे, उसी का नाम सत्य है। और वो अनुभव से आता है, केवल व्याख्या से तो नहीं, वो अव्याख्य है। लेट्स एक्नॉलेज प्लीज। स्वामी कृष्णानंद भारती किधर? राइट। भय से अभयता की यात्रा कैसे करें? लगता है कि भय के प्रति निंदा भाव है तुम्हारे मन में। भय बड़ी अच्छी चीज है, नहीं तो जीटी रोड पर खड़े हो जाओगे, आ ट्रक मुझे मार। भय का अर्थ है सुरक्षा भावना। जैसे बस में सफ़र करते हो, ट्रेन में सफ़र करते हो, लिखा रहता है अपने सामान की हिफाजत खुद करें, ऐसे ही परमात्मा तुमको प्राण देता है और साथ में इम्प्रिंट कर देता है कि अपने प्राण की सुरक्षा खुद करो। ये भय नहीं है, ये रक्षा भाव है कि ताकि अपने आप को, अगर ये परमात्मा इंस्टिंक्ट नहीं दे तुमको कि जहाँ खतरा हो सकता है उसे सावधान रहो, तब तो जहाँ तहाँ तुम सांप को, जैसे बच्चों को वो भय नहीं है तो सांप भी आएगा तो वो पकड़ना चाहेगा, चींटी को भी खा जाना चाहेगा, किसी चीज़ आग को में भी वो हाथ रख देगा। तो माँ बाप समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा भय पैदा करते हैं। तो निश्चित रूप से ये भय का जो इंस्टिंक्ट है, ये इंस्टिंक्ट परमात्मा से हमको मिला हुआ है ताकि हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। हाँ, कभी कभी कोई चीज़ अति सर्वत्र वर्जित, ये बात बिल्कुल ठीक है, सम्यक भय तो होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को अति भय है, वो पत्नी तक से डर रहे हो, अब ये बात जरा ठीक नहीं है। अब ये डरने वाली पत्नी कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। अब झूठ बोल रहे हो पत्नी से, कहीं जा करके थोड़ा पी लिया है, अब मुँह से दुर्गंध आ रही है, पत्नी पूछ रही है कहीं पी लिया है, कि अब झूठ बोल रहे हो कि पत्नी के डांट खाओगे। बोले हाँ थोड़ी पी ली थी, अब गलती करोगे तो डांट खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ना। अब इतना भी डरने की बात नहीं है कि डर के मारे झूठ बोलना शुरू कर दो। तो निश्चित रूप से कुछ लोग अति भयभीत होता है, कोई भूत प्रेत से डरता है, कोई सांप से डरता है, तो नाहक ही तुम डरते हो। तो जिस चीज़ से, कोई पानी से डरता है, पानी में कूद नहीं सकता, पानी स्विमिंग पूल में उतर नहीं सकता, नदी के किनारे जा नहीं सकता, हाँ उन सब भय से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए साधना में श्मशान साधना कराई जाती है आवश्यक रूप से। तुम्हें भूत प्रेत का डर लगता है, अरे उसके हाथ है ना पाँव है, वो करेगा क्या? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। और एक प्रसन्न व्यक्ति को कभी भूत प्रेत का प्रकोप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारा ऑरा फैला रहता है शरीर में। तुम सबके ऑरा मैं देख सकता हूँ। जब तुम निरति समाधि में आओगे तो तुम ऑरा देखना सीख जाओगे कि ऑरा किसका, ऑरा कितना फैला हुआ है। तो जो जितना प्रसन्न रहता है उतना उसका ऑरा फैला रहता है, और जो जितना दुखी रहता है, उदास रहता है, उसका ऑरा उतना सिकुड़ा हुआ रहता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भूत ने पकड़ा इसलिए डिप्रेशन में गया हो, उल्टी बात है। पहले डिप्रेशन में जाते हो फिर भूत पकड़ता है, ठीक उल्टी बात है। डर जाते हो, जैसे भूत को तुमने देखा, अशरीरी आत्मा देखा। मृत्यु के बाद 40 दिन तक ये जो अशरीरी जो आत्मा होती है वो यहीं रहती है। 40 दिन के बाद स्पिरिट गाइड उसको ले जाता है। 40 दिन तक इसलिए छोड़ देता है कि अपने सांत्वना देने के लिए वो रुक जाता है। और ख़ासकर जो लोग सुसाइड करते हैं उनको इतनी जल्दी स्पिरिट वर्ल्ड में स्थान नहीं मिलता। वो बाकी सब चीज़ें क्षमा कर दी जाती है, लेकिन कोई आत्महत्या अगर करता है तो शिव लोक के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वे क्षमा नहीं करते हैं। इसके लिए तुम्हें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहता, बाकी सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में कि तुम गर्भ में जाओ, कहाँ जाओ, ये सब शेड्यूल्ड है। महाजीवन प्रज्ञा में जब तुम यहाँ आओगे तो ये सारी बातें जानोगे कि कहाँ रहते हो स्पिरिट वर्ल्ड में, वहाँ से माँ के गर्भ में कैसे 90 दिन का होता है, भ्रूण होता है तो 90 दिन प्रवेश करते हो, और कैसे वो भ्रूण 180 डिग्री घूम जाता है। पहले बच्चे का पाँव नीचे रहता है, सिर ऊपर रहता है। जिस दिन आत्मा प्रवेश करती है उस दिन वो घूम जाता है और सिर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है। कोई बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, वो 180 की जगह 360 डिग्री घूम जाते हैं और फिर वो पैर की तरफ से पैदा होते हैं। इसलिए पैर की तरफ से जो जो पैदा होते हैं बहुत बहुत ही नटखट किस्म के लोग होते हैं। तो हर चीज़ नियमित रूप से होती है। यहाँ सब चीज़ परफेक्ट, करीब करीब परफेक्ट है मामला एकदम से। तो ये सारी चीज़, लेकिन कुछ इसलिए होता है कि तुम इस जीवन में आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, कुछ पाठ सीखने के लिए आए हो। उस पाठ को सीख करके हम यहाँ से विदा होते हैं। कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में सुसाइड नहीं होता, क्योंकि तुमने मांगा है कि हमको शरीर दो। तुम अपनी मांग पर आए हो और तुमको आने के पहले सारी चीज़ मुख्य घटनाएँ दिखा दी जाती हैं कि ये तुम्हारे जीवन में घटनाएँ घटेंगी। जैसे मुसलमानों में शादी होती है, कहती है निकाह कबूल, वो कहती है दुल्हन कबूल। अब तुमने कबूल कर लिया है, वो सारा चलचित्र तुमको, तुम्हारा आकाशिक रिकॉर्ड वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है, वो आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार तुमको दिखाया जाता है ये तुम्हारे जीवन में मुख्य मुख्य घटनाएं घटेंगी। तुम कहते हो कि हाँ कबूल, मैं फेस करूँगा, और यहाँ आकर के तुम फेस नहीं किए, सुसाइड कर लिया। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और तब जा कर के तुम थोड़ा भटकते हो, इधर से उधर भटकते हो। लेकिन ऐसे लोग दिख सकते हैं स्पेशली सूर्यास्त के 1 घंटे बाद या सूर्योदय के 1 घंटे पहले, लेकिन वो तुमको हानि नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम प्रसन्न हो, अगर तुम निडर हो, तो कोई उनको ऑरा को पार करने की शक्ति नहीं है। लेकिन तुम डर गए तो ऑरा जब सिकुड़ जाता है तभी तुम्हारे भीतर वो प्रवेश करते हैं। इसलिए सभी साधकों को पुराने ज़माने में अनिवार्य रूप से श्मशान में बिठाया जाता था कि जाकर श्मशान में बैठो ताकि तुम्हारा डर विदा हो जाए। अभय, तुम पूछते हो भय से निर्भयता की यात्रा कैसे होती है, ये विभूति तंत्र योग है। जब ध्यान समाधि में आप आओगे तो उस समय तुमको बताया जाएगा, तंत्र योग में विभूति तंत्र योग बताया जाएगा, जहाँ से भय से निर्भयता की यात्रा। वैसे सबसे बड़ी आज अब श्मशान में बैठने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया है कि राफ्टिंग में चले जाओ, नदी में, गंगोत्री में होता है राफ्टिंग होता है, या ऋषिकेश में भी होता है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 3,000 रुपये में हो जाता है। और वो नदी की जो धारा होती है, अभी मैं नेपाल में गया था तो त्रिशूली नदी बड़ी भयंकर नदी है, और मेरी बेटी पानी से बहुत डरती थी, तो मैंने कहा कि 10-15 दिन तो स्विमिंग पूल में बिता लो, उसके बाद राफ्टिंग कर लो। उसका राफ्टिंग, वो भी नदी में, मैं तो स्विमिंग पूल में नहीं उतर सकती। मैंने कहा कि तभी तो तुमको भय से निर्भयता की यात्रा कराना बहुत ज़रूरी है। 15 दिन स्विमिंग पूल में उतरना जान लो और थोड़ा हाथ पैर मारना सीख लो, और मैं हूँ तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। और वो वहाँ गई, अपने दोस्त के साथ भी आई, उसके ऑफिस में ही काम करती है वो भी, दोनों आए। और उसके बाद राफ्टिंग जब त्रिशूली नदी की शुरू हुई तो इतनी भयंकर कि बोट तो नीचे जाए तो लगे कि ऊपर आने का तो कोई सवाल नहीं, उसकी दोस्त तो बोट से फिंक भी गई एकदम नदी में। लेकिन इतना बढ़िया वहाँ लाइफ जैकेट वगैरह होता है कि तुम डूबना भी चाहो तो डूब नहीं सकते हो और रेस्क्यूअर साथ साथ चलते हैं। हाँ, लाइफ जैकेट नहीं हो तो राम नाम सत्य है, फिर तो बचाने का कोई उपाय नहीं। फिर मैंने उसको कहा कि अब कूदो तुम बोट से इस नदी में, अब कूदो। तो उसने कहा कूद जाओ। उनके हाँ बिल्कुल कूद जाओ, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ। और वो कूद गई नदी में और फिर देखा कि अरे तो बड़ा मज़ेदार है, नदी से उसकी दोस्ती हो गई। और तैरते फिर के तैरते हुए चलो नदी में थोड़ी देर, और उसके बाद जब राफ्टिंग के बाद आए, बोला कि पापा न केवल मेरा पानी से भय विदा हो गया बल्कि मुझे बहुत ही मज़ा आया और एक बार और राफ्टिंग करने का इरादा, हो सकता है गंगोत्री में अभी मैं जा रहा हूँ और बद्रीनाथ केदारनाथ तो फिर ज्वाइन करें और वहाँ फिर राफ्टिंग करने का। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि ओशो धारा के सभी साधकों के लिए राफ्टिंग अनिवार्य होना चाहिए। कितने लोगों ने राफ्टिंग किया है, हाथ उठा जरा, ब्यूटीफुल। कितने लोगों ने नहीं किया है, बाकी किसी ने किया, ओ माई गॉड। तो मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि राफ्टिंग बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, बिल्कुल ख़तरनाक नहीं, वो मेरी गारंटी है। कोई भी डूब नहीं सकता, तुम डूबना भी चाहो तो इतना इंतज़ाम पुख्ता होता है कि ना तो पानी पी सकते हो ना डूब सकते हो, और इसलिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरे से खेलने का बड़ा मजा है। इसलिए एक बार अगर सचमुच आप निर्भयता की साधना करना चाहते हो तो श्मशान सेवन बड़ा लंबा पीरियड था, अब 40 दिन करना पड़ता था, राफ्टिंग में तो 8 घंटे 10 घंटे मुश्किल से, और फिर आप देखोगे कि बिल्कुल निर्भय हो जाओगे। लेट्स एक्नॉलेज प्लीज। जय नारायण भिवानी। राइट, हम राधा स्वामी मत के सत्संगी हैं और बहुत अच्छी यात्रा चल रही है बाबा जी, यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। क्या आप दोबारा दीक्षा लें तो पुराने गुरु के साथ द्रोह की स्थिति तो नहीं होगी? सुना है कि गुरुद्रोही को कहीं ठिकाना नहीं होता, कृपया स्पष्ट करें। ये कई लोगों का ये प्रश्न हो सकता है। एक बात याद रखना, गुरुद्रोह का अर्थ है कि गुरु के खिलाफ सुनना या बोलना, इसका अर्थ है गुरुद्रोह। इसलिए ठीक से समझ लो, गुरु के प्रति शिकायत भाव रखना गुरुद्रोह है, गुरु के प्रति शिकायत व्यक्त करना द्रोह है, या गुरु की शिकायत सुनना भी द्रोह है। इसलिए शास्त्रों में वचन है कि अगर गुरु की शिकायत कहीं होती है तो तुम्हारा वश चले तो उसकी जीव काट लो, और नहीं वश चले तो वहाँ से उठ के चले जाओ। गुरु की शिकायत सुनना और करना दोनों ही गुरुद्रोह है, और गुरुद्रोह के समान पाप नहीं है। सारे पाप तुम्हारे क्षमा हो जाते हैं, गुरुद्रोह तो क्षमा नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना कि ज्ञान के लिए कहीं भी जा सकते हो, और अगर सद्गुरु होगा तो तुमको कभी मना नहीं करेगा। जैसे हमारे ओशोधारा में लोग आते हैं, उनको हम कहते हैं सब जगह जाओ। खुद अपने 1200 संगत के साथ मैं राधा स्वामी सत्संग गया, तुम्हारे गुरु से मिला, गुरिंदर सिंह जी के निमंत्रण पर। बड़े प्रेम से उन्होंने स्वागत किया, हमने उनको कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे लोग आपके यहाँ आएँ और गुरु सेवा सीखें। और आश्चर्य की बात, इतने ऑनेस्ट हैं, इतने वो ईमानदार हैं कि हंस के उन्होंने कहा कि आपको दूर से सब हमारी अच्छाई पहुँचती है आपके तक, लेकिन असली बात है कि मेरा दिन भर इनका झगड़ा निपटाने में जाता है। लेकिन इज़ वेरी ऑनेस्ट, और बहुत ही, राधा स्वामी परंपरा को मैं विश्व की श्रेष्ठतम परंपरा मानता हूँ, श्रेष्ठतम जीवंत परंपरा आज के युग में है। लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं, जिस दिन मैं ही गया था उस दिन 50,000 लोग आए हुए थे, और संडे को पता चला 5,00,000 लोग आते। मैंने गुरिंदर सिंह जी से कहा कि आप सत्संग केवल क्यों कराते हो? उन्होंने हंसका, हम तो राधा स्वामी सत्संग है, हम कहाँ कहते हैं हम साधना कराते हैं, हम तो सत्संग हैं, बोला कि साधना क्यों नहीं कराते? वो हंसने लगे, बोला कि ये 50,000 लोगों को साधना कराई जा सकती है क्या? यहाँ सत्संग ही हो सकता है, लोग अपने से जो साधना करें करें। निश्चित रूप से ओशो धारा में थोड़े लोग हैं, और मैं परमात्मा से हमेशा कहता हूँ कि इतने ही थोड़े लोग रहें तो ठीक है, क्योंकि अभी साधना हो सकती है। ओशो के पास भी लाखों लोग पहुंच गए, नेचुरल था, साधना नहीं हो सकती। साधना तो सीना पसीना की बात होती है, ये तो उपनिषद घटित होता है गुरु शिष्य के साथ, तब साधना होती है। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं टीवी पर बोलते, इतने लोगों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये कितना एरिया है जिसमें हम रहते हैं आपको पता है? उनके ना भाई 700 एकड़ में, और यहाँ बिजली का बिल आता है 25 लाख रुपये महीना, बिजली का बिल। और अगर हम टीवी पर बोलना शुरू करें तो फिर यहाँ कौन आएगा? सब टीवी पर घर बैठे सुनेंगे। तो निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर परंपरा से चला रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो निश्चित कहीं से तो ज्ञान जाकर के लोग है जिस परिवार में तुम जन्म लिए, अगर वहाँ पर ज्ञान उपलब्ध नहीं है तो क्या परिवार के बाहर जाकर के ज्ञान नहीं लोगे क्या? और ज्ञान अगर लेते हो, जैसे अब तुम भारत में पैदा हुए और अमेरिका चले गए धन कमाने के लिए, तो क्या वो देशद्रोह हुआ क्या? जाते हो अमेरिका से जहाँ धन कमाओ कमाओ, लेकिन अमेरिका जा करके धन कमाना क्या देशद्रोह हुआ क्या? भारत के प्रति द्रोह हुआ क्या? ऐसे ही किसी भी सद्गुरु के से तुम जुड़े हो, किसी और संत के पास जा करके और ज्ञान लेना, ये गुरुद्रोह नहीं है। दूसरी बात तुमसे कहना चाहूँगा, ओशो धारा में डबल नागरिकता, जैसे मान लो कि अमेरिका जाते हो वहाँ के भी नागरिक हो गए तो क्या भारत की नागरिकता खत्म हो गई क्या? दोनों नागरिकता है। तो ऐसे ही तुम राधा स्वामी की भी नागरिकता लिए रहो, ओशो धारा की भी नागरिकता लिए लो, इसमें दिक्कत कहाँ पर आती है? और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ओशो धारा में दीक्षा लेने के बावजूद भी तुम राधा स्वामी के प्रति अपने प्रेम में कमी मत रखो, अपने अहोभाव में कमी मत रखो। तुम वहाँ भी जाओ, अपने अहोभाव व्यक्त करो। और राधा स्वामी परंपरा की एक और अच्छी बात तो मैं बताता हूँ, वे लोग पूछते तक नहीं, जो भी सत्संगी जाते हैं वहाँ उनसे ये नहीं पूछते कि तुमने हमारा दान मंत्र लिया है कि नहीं लिया है। कोई भेद नहीं है उनके यहाँ, जिसने नाम लिया जिसने नाम नहीं लिया दोनों में कोई भेदभाव नहीं बरतते हैं। तो वे लोग जब इतने उदार हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं अन्य जगह ये संकीर्णता है, लेकिन राधा स्वामी मत में ऐसी कोई संकीर्णता नहीं। जैसे हमारे ओशो धारा में भी जो लोग आते हैं उनको हम कहते हैं कि भाई तुम सब जगह जाओ, सारे संतों के पास जाओ। जैसे कोई मधुमक्खी पाले और कहे कि मेरे ही बगीचे से फूल लेना, मेरे ही बगीचे से पराग लेना, किस खबरदार जो किसी और के बगीचे में जा करके पराग इकट्ठा किया, तो मधुमक्खियों के प्रति थोड़ी ज्यादती होगी। हम तो ओशो धारा में कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जितने भी संत हैं सब कुछ देगा ही, संत लेगा क्या तुमसे, सब जगह जाओ, जहाँ भी अलग जगह है सब जगह जाओ और अपना विवेक रखो, जहाँ भी सीखने लायक वस्तु है वहाँ तुम सीखो। लेट्स एक्नॉलेज प्लीज। एक हैं प्रवीण रोपड़ का, राइट, ध्यान समाधि कर चुका हूँ, विचार दिखने लगे हैं जो पहले अज्ञात थे, ध्यान में बहुत परेशान करते हैं, कहते हैं मन बेचे सदगुरु के पास तो ले लीजिए ना प्लीज़, कुछ भी देकर, मॉडल पुराना है पर कंडीशन बिल्कुल नई है, आभारी रहूँगा। प्रवीण, मीरा कहती है मेरो मन बड़ो हरामी ज्यो मद मातो हाथी। मन बड़ा हरामी है, और क्या फिर कहती है कि गुरु उपदेश का आंकुश ले समझाती, ये गुरु का आंकुश ही इस पर काम करता है, नहीं तो किसी का आंकुश इस पर काम करता नहीं है। निश्चित रूप से मन मित्र भी हो सकता है और मन शत्रु भी हो सकता है। मन को मित्र तभी बना सकते हो जब गुरु से मैत्री साध लो। और एक और बात याद रखना, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या साधना की ऊंचाइयों पर गए लोगों भी मन के कारण फिसल सकते हैं, अहंकार के कारण फिसल सकते हैं? क्या आपकी साधना में 14 तल की समाधि है तो क्या कोई 12वीं समाधि करके 13वीं समाधि करके भी नीचे गिर सकता है? ऐसा लोग मुझसे पूछते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जितना जो ऊपर चढ़ता है उसके गिरने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है, और गिरने के बाद बड़ी चोट भी लगती है। जैसे तुम 5 फीट चढ़े, तुम्हारे गिरने की संभावना ज़्यादा नहीं है, 5 फीट से क्या गिरोगे? लेकिन अगर तुम हिमालय की चोटी पर चढ़ रहे हो, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के पास पहुंच गए हो, वहाँ से गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और गिरोगे तो फिर चकनाचूर भी हो जाओगे, हड्डी पसली, बचने का वहाँ से कोई उपाय नहीं है। जितने साधना में आगे बढ़ते चले जाते हो उतनी गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, और गिरने के बाद फिर संभलने का समय नहीं बचता है। तो इसलिए शेख फरीद कहते हैं कि बाट हमारी खड़ी उठीली, हमारी जो राह है तलवार की धार पर चलने जैसा है। ठीक बात है, साधना में ऐसा ही है। तो अहंकार जो मन का पक्ष है, ईगो, और ईगो क्या है, मैं कुछ हूँ। देखो तीन तरह के तुम्हारी चेतना के तल हैं, पहला अहंकार, दूसरा अस्मिता, और तीसरा आत्मा। अहंकार क्या है, आई एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, ये अहंकार, मैं हूँ, ये अहंकार, ये मैं अहंकार है। दूसरा, मैं खत्म हो गया, हूँ, इंडिविजुअलिटी बची, पर्सनालिटी, ईगो, माइंड वैनिशेज, हूँ, मैं हूँ का मतलब क्या हुआ, आई एग्जिस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स, ये हूँ, हूँ पन ठीक है, आई एग्जिस्ट, जब कहता हूँ मैं, तत्काल मुझे बोध है इतने लोगों की उपस्थिति के बीच मेरी उपस्थिति है, यह अहंकार है। एंड आई एग्जिस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे तुम बाथरूम में होते हो, वहाँ कोई अहंकार नहीं होता है, किसी का ख्याल नहीं है, बाथरूम में नहाओ मजे से, मुँह बिचकाओ, गाओ, उछलो, कूदो, नाचो, कोई किसी और का ख्याल नहीं है। इसलिए बाथरूम मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। एक कदम तो तुम पार कर ही चुके, अहंकार तो रहा ही नहीं, इसलिए अपना टाल लाउड ये टेप रिकॉर्डर वगैरह सब वहीं रखो। दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन, नो वन विल डिस्टर्ब यू। तुम्हारा ध्यान कक्ष में भी आके खटखट खटखट कर देता। बाथरूम में पत्नी भी जरा नहीं जा पहुँच पाती है, वैसे कुछ पत्नियाँ बाथरूम में भी कर देती कि सुनो जी कौन आया है, नहीं वहाँ तो कम से कम छोड़ दो, कोई आया है उसको बिठाओ, चाय पियाओ, उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिविजुअलिटी है, आई एग्जिस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स। और तीसरा, डिविनिटी का क्या मतलब है, अब मैं हूँ गया, अब हैपन, इजनेस इज देयर, एक सत्ता है बस, वही है, हम तो है ही नहीं। जब तक उस हैपन में जीना नहीं शुरू करते हो तब तक ये मन तो परेशान करता है। जिस दिन निर्वाण समाधि में आते हो वहाँ देखते हो ये मैं भी गया, मैं हूँ भी गया, और केवल बच गया एक है, एक इजनेस, एक भगवत्ता, एक ही सत्ता बची, बस उस दिन मन परेशान नहीं करता। मगर उस हैपन, ऐसा मत समझना कि एक बार निर्वाण समाधि में छः दिन यहाँ पर आए, हैपन में जी लिए, अब तो ठीक नहीं, फिर घर जाओगे, फिर धूल जमेगी, और फिर हैपन से हूपन, हूपन से मैंपन, बस आ जाओगे, फिर पूछ फिर से लग जाएगी, हाँ पूछ काट के भेज देते हैं, फिर पूछ जाके पैदा पूछ, जैसे किसी का पूछ काटो तो धीरे धीरे फिर से पूछ आ जाती है, ऐसे तुम्हारे मैंपन की पूछ फिर से पैदा हो जाती है, फिर से खतरा पैदा हो जाता है। लेट्स एक्नॉलेज प्लीज। अनु रूपनगर, राइट। प्रभु मैं जानना चाहते हूँ कि कभी कभी हम जो सोचते हैं तो होता जाता है, या जैसे हम कुछ खरीदते हैं या करते हैं हमें कुछ पता नहीं होता क्यों खरीदा, मगर आने वाले समय में उस बात की इम्पोर्टेंस पता लगाते हैं। मीन्स मैं ये जानना चाहता हूँ ये हमारे साथ कौन होता है जो हर वक्त हमारे बुरे भले की फ़िक्र होती है, क्या ये गुरु होते हैं या स्पिरिट गाइड, क्या हमारे गुरु ही हमारे स्पिरिट गाइड हैं। दूसरे शब्दों में प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग अक्सर ग्रहों की बात करते हैं कि शनि ग्रह के लिए ये दान करो, बुध के लिए, क्या ये ग्रह कुछ होते हैं, हमसे इनका क्या संबंध है। दो बातें पूछी है, एक स्पिरिट गाइड के बारे में, दूसरा ज्योतिष के बारे में। स्पिरिट गाइड की सत्ता है, भारतवर्ष में उनको देवी देवता कहते थे, पश्चिम में उसको एंजिल कहते हैं, और जो तुम्हारा अपना व्यक्तिगत गाइड होता है उसको स्पिरिट गाइड कहते हैं। जैसे महाजीवन प्रज्ञा में जब आते हो तो अपने स्पिरिट गाइड से तुम मुलाकात करते हो कि तुम्हारा स्पिरिट गाइड कौन है। जो तुम्हारे जन्म और मृत्यु का नियामक करता है, तुम्हारे जीवन उसका, तुम्हारे जीवन का जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो उसके पास रहता है। इसलिए जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय में या महत्वपूर्ण जहाँ फंसते हो वहाँ वो तुमको इशारे करता है, विचार के रूप में किसी से कहलवा देगा, इशारे करता जाता है। तो ये उसकी ड्यूटी लगी हुई है। सांसारिक जीवन में तुम कैसे जियो इसका गाइड स्पिरिट गाइड होता है, आध्यात्मिक जीवन में कैसे जियो ये तुम्हारा सदगुरु करता है। दोनों एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे सदगुरु तुमको नहीं बताएगा कि संसार में तुमको कैसे रहना है, किसे शादी करनी है, किसे नहीं करनी है। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं हम लोग शादी करने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दें। हम कहते कम से कम दुखी हो। क्यों? ये तो पता है कि सुखी तो बंदा होगा नहीं, और अगर हम बोल दें तो हमें भी गाली देगा कि उन्होंने भी नहीं कहा था सुखी हो, कहा था कहाँ सुखी, कहेगा सुख। लेकिन जब हम कह देते हैं कम से कम दुखी हो, तो कम से कम हमें गाली नहीं देता कि चलो हाँ ये तो ठीक है, गुरुजी ने तो कहा ही था कम से कम दुखी हो, आशीर्वाद दिए। मतलब दुखी होना तो तुम्हारी नीति थी। तो लेकिन इसलिए संसार में, लेकिन स्पिरिट गाइड तुमको गाइडेंस देता है। कभी मुसीबत में, कभी एक्सीडेंट होने वाला है और सडनली देखोगे सब कुछ हो गया, हाँ अच्छा ठीक तो है, उस समय कौन तुमको मदद कर रहा है? ये तुम्हारा स्पिरिट गाइड कर रहा है। लेकिन स्पिरिट गाइड ये ध्यान क्या है, समाधि क्या है, स्मरण क्या है, मुक्ति लोक की यात्रा क्या है, ये अब स्पिरिट गाइड नहीं बता सकता। वो जानेगा भी तभी नहीं बता सकता, अधिकतर केसेस में तो उसको पता भी नहीं रहता। लेकिन अगर जानता भी है, क्योंकि कई हाई क्वालिटी के सोल्स भी स्पिरिट गाइड होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है, और किसी किसी केस में जो गुरु होता है तुम्हारा इस देह में, उस वो भी स्पिरिट गाइड का काम करता है। लेकिन कैसे करता है? क्योंकि जब तुम लोग आए हो यहाँ तो ऐसा मत समझना कि 100% तुम यहाँ पर चले आए हो, तुम्हारा कुछ परसेंटेज इस देह में जन्म लेता है। जैसे जाता है क्राफ्ट, जाता है चांद पर, तो क्या होता है मदर क्राफ्ट से निकल करके कैप्सूल जाता है चांद पर विजिट करके, फिर वो फिट करके और मदर क्राफ्ट में फिट हो जाता है, फिर वो धरती पर आता है। तुम्हारा मदर क्राफ्ट शिवलोक में रहता है, स्पिरिट वर्ल्ड को भारत के लोग शिवलोक कहते हैं, और वहाँ से तुम्हारा 60% या 70% एनर्जी, गॉड, व्हाट इज़ गॉड, इट इज़ कॉस्मिक एनर्जी, व्हाट इज़ सोल, इट इज़ स्पिरिचुअल एनर्जी, उसी डिविनिटी का ही एक पार्ट समझ लो। तो वो जो मदर क्राफ्ट में से 60% तुम्हें, और बुद्ध पुरुषों का तो और कम ऊर्जा, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उतनी ऊर्जा ह्यूमन बॉडी झेल ही नहीं सकती, तो उनकी तो 25% आ जाए तब भी समझना बहुत है। तो बाकी जो मदर क्राफ्ट में एनर्जी बची, दैट कंटिन्यूज टू एक्ट एज ए स्पिरिट गाइड, वो स्पिरिट गाइड के रूप में काम करती रहती है। तो निश्चित रूप से स्पिरिट गाइड तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। और जहाँ तक ज्योतिष का प्रश्न है, एक बात याद रखना, तुम्हारा आकाशिक रिकॉर्ड तो है, और उस आकाशिक रिकॉर्ड को अनफोल्ड करने के विज्ञान का नाम है ज्योतिष विज्ञान। इस पर ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान, ओशो का बड़ा ही सुंदर प्रवचन है, किताब भी है उसकी, लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जो उस विज्ञान को समझ पाते हैं। अभी भी ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बहुत ही डेवलप नहीं है। लेकिन जैसे अगस्त संहिता है, जैसे भृगु संहिता है, उसमें उस आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ने की कोशिश की गई है, और हज़ारों लोगों की उसमें आकाशिक रिकॉर्ड उसमें दिया हुआ है। कुछ परिवारों में अभी भी वो संहिताएँ हैं। उसी तरह से ग्रहों के आधार पर भी उसको समझने की कोशिश की गई है। मगर एक बात याद रखो, ये बातें तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक तुम सदगुरु से जुड़े नहीं होते हो। एक बार तुम सदगुरु, एक बार ट्रेन में मैं जा रहा था, एक बंदे ने हमारा ड्रेस देखा, माला और ये घड़ी का वस्त्र देखा, और हाथ लेकर के बड़े के बढ़ा दिया, बोले कि आपके पोशाक से लगता है कि आप संत हैं, तो कृपया मेरा हाथ देख करके बताइए कि मेरा भविष्य क्या है। मैं भी हंसने लगा। मैंने कहा भविष्य जानना हो तो किसी ज्योतिषी के पास भी जा कर के भविष्य जान सकते हो, भविष्य बनाना हो तो संत के पास आ जाओ। भविष्य संत बताता नहीं, वो बनाता है। तुम जैसा चाहो तो अपने भविष्य को संवार लो, अपने पुरुषार्थ की कलम से अपने भविष्य को जैसा चाहो लिख लो। और ये बातें तो हम तुमको सम्मोहन प्रज्ञा में बता देते हैं। 3 दिन के लिए सम्मोहन प्रज्ञा में आ जाओ, तुमको हम बता देंगे, एक विशिंग वेल से परिचय करा देंगे, उस विशिंग वेल में जा करके जो विश करो तुम्हारी ज़िंदगी वैसी ढल जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहो तुम ढाल सकते हो। लेकिन ये बात भी सत्य है कि तुम्हारा जीवन का एक ब्रॉड जो मैप है वो तय है, जैसा तुमने निर्धारित किया है, जो जीवन तुमने को यहाँ जीना है करीब करीब तय है, लेकिन उस जीवन के रूट को तुम बदल सकते हो। ये तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम उसी पथ पर चलो। लेट्स एक्नॉलेज ऑन रितु किधर, राइट। मैंने एमए साइकोलॉजी किया है तथा शांतिकुज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ध्यान की कक्षा में मुझे अनुभव हुआ जैसे पहले पहले तो मैं अंदर से ही गोल गोल घूम रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा शरीर भी गोल गोल घूमता जाता है और जब ध्यान करती हूँ तो ऐसा ही होता है। जो आज हम हैं वो पिछले कई जिंदगियों का रिजल्ट है और आगे जो हम जिंदगी जीने जा रहे हैं उसमें हमारी वर्तमान ज़िंदगी में हम जो जानते हैं, जो साधना करते हैं, उसकी भूमिका होती है। आज अगर आप लोग यहाँ हो तो निश्चित रूप से आपकी महाजीवन की जो यात्रा चल रही है उससे प्रेरित होकर के ही आप यहाँ पर हो। एक जीवन की यात्रा चलती है जन्म से मृत्यु तक और एक महाजीवन की यात्रा चलती है जिसमें अनंत जन्मों की श्रृंखला चलती रहती है। जो हमारा रुझान है, जो हमारा झुकाव है अध्यात्म के प्रति, जो हमारा लगाव है, वो हमारे जो पिछली यात्रा है उसका परिणाम है। तो निश्चित रूप से जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो पीछे हमने जो ध्यान किया है उसके बीज कुछ मौजूद हैं जो बीच बीच में वो अभिव्यक्ति दे जाते हैं। जो तुमको ध्यान में अनुभव हो रहा है सूफी विरलिंग मेडिटेशन का अनुभव है। जब तुम महाजीवन प्रज्ञा में यहाँ आओगे तब जानोगे कि अपने पिछले किसी जन्म में तुमने सूफी साधना की है। इसलिए जैसे ही साधना के लिए बैठते हो कभी कभी तुमको विरलिंग मेडिटेशन, सूफियों में एक प्रसिद्ध मेडिटेशन है, उसके अनुभव होते हैं कि कहीं घूमे चले जा रहे हो। तो निश्चित रूप से सूफी विरलिंग मेडिटेशन इज़ वेरी गुड, लेकिन ध्यान से आगे सुमिरन की यात्रा है, सुमिरन से आगे समाधि की यात्रा है, समाधि की अनंत यात्राएं हैं। तो इससे इतना ही तुमको बोध होना चाहिए कि कहीं ना कहीं साधना के बीज तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। अब उसकी फ्लावरिंग करानी है, उसको और विकसित करना है, और विकसित करना है। और अगर इसको ठीक से जानना चाहो तो महाजीवन प्रज्ञा में 3 दिन के लिए आ जाओ, वहाँ तुम जानोगे कि ये जो तुम्हारा अनुभव है उसका पास्ट में लिंक क्या है। लेट्स एक्नॉलेज रितु। आशुतोष दिल्ली किधर, अच्छा राइट। ओशो ने अपने ध्यान और प्रेम के अभियान को क्रांतिकारी ढंग से चलाया, क्या ओशो के बाद उसमें कमी नहीं आई है? डायमंड सूत्रास ओशो का एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन माला है। गौतम बुद्ध के 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं उनके प्रवचनों का, सूत्रों का। पहला धम्मपद जिस पर ओशो का प्रवचन है एस धम्मो सनातनो, दूसरा प्रज्ञा पारमिता जिस पर ओशो का प्रवचन है लोटस सूत्रास हार्ट सूत्रास, और तीसरा है ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका जिस पर ओशो का प्रवचन है डायमंड सूत्रास। उसमें ओशो कहते हैं कि हर 2500 साल के बाद कोई न कोई आता है धर्म चक्र चलाता है, जैसे कृष्ण ने जो धर्म चक्र चलाया। कृष्ण के पहले वेदों के काल में ऋषियों ने धर्म चक्र चलाया, कृष्ण तक आते आते वह धर्म चक्र लगभग रुक गया। फिर कृष्ण आए और एक नए धर्म चक्र का सूत्रपात किया और वह धर्म चक्र 2500 साल तक चलता रहा। गौतम बुद्ध तक आते आते वह धर्म चक्र पूरी तरह रुक गया। फिर गौतम बुद्ध ने नए धर्म चक्र का प्रवर्तन किया और 2500 साल बाद आते आते गौतम बुद्ध का भी धर्म चक्र रुक गया। उसके बाद ओशो आए और उन्होंने इस धर्म चक्र का सूत्रपात किया और डायमंड सूत्राल में प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका में खुद गौतम बुद्ध कह रहे हैं, उनसे पूछता है कि उनका भिक्षु कि भगवान आप जैसे सुंदर वचन कह रहे हैं, आप जैसे साधना के सूत्र दे रहे हैं, क्या कभी होगा कि ऐसा कोई महापुरुष आएगा जो ऐसे वचन समझाएगा हमें? बुद्ध उसके मुख पर इशारा करते हैं, चुप करो, मैं देख रहा हूँ कि ऐसा एक महापुरुष आया है और उसके सामने गैरिक वस्त्र में लोग बैठे हुए हैं और ठीक इन्हीं सूत्रों को समझा रहा है और ओशो इसको कहते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए कह रहा है गौतम बुद्ध. इट्स सो थ्रिलिंग जस्ट टू इमेजिन दैट गौतम बुद्ध कुड विजुलाइज दिस व्हाट इज हैपनिंग टुडे. और तुम्हारे लिए ये बुद्ध के वचन है. वो देख रहे थे इस दृश्य को कैसे ओशो उन्हीं वचनों को समझा रहे हैं. तो एक बात निश्चित समझ लो कि ओशो ने 2500 साल बाद एक नए धर्म चक्र का प्रवर्तन किया है. और फिर ओशो कहते हैं अब ये धर्म चक्र 2500 साल तक चलेगा, लेकिन इस धर्म चक्र को चलाने की जो जिम्मेवारी होगी वो उनकी होगी जो उन्हें प्यार करते हैं, जो उनके शिष्य परंपरा में आते हैं. अब ये जिम्मेवारी उनकी होती है. अब उन्होंने एक धर्म चक्र चलाया, धर्म चक्र का सूत्रपात किया. अगर इस धर्म चक्र को आगे कोई नहीं बढ़ाए तो निश्चित रूप से यह धर्म चक्र रुक जाएगा. लेकिन हमें भरोसा है कि जब कृष्ण का धर्म चक्र 2500 साल नहीं रुका, बुद्ध का धर्म चक्र 2500 साल नहीं रुका, तो ओशो का भी धर्म चक्र 2500 साल के पहले तो रुकने वाला नहीं है. मगर एक बात याद रखना, ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी हम सब की है जो ओशो को प्यार करते हैं. और एक बात और समझ लेना, ओशो से पूछा जब खूब बाधाएँ आने लगी, तुम जानते हो 20 देशों में वे गए, सब जगह से निष्कासित किए गए. ओशो से किसी ने पूछा कि ये जो आपने कहा था कि धर्म चक्र चलेगा 2500 साल चलेगा, लेकिन अभी ही रुकता हुआ प्रतीत होता है. ओशो ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, ये थोड़ी गति स्लो होती हुई दिखती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 1997 से ये फिर से ये धर्म चक्र अपना मोमेंटम पकड़ेगा. ये वचन 89 के हैं और मई 96 के ओशो टाइम्स में छपे हुए ये वचन हैं. और 1997 से तुम जानते हो कि ओशो धारा का जन्म हुआ, और आज ओशो धारा के कारण ओशो की दृष्टि अनुभव की जा रही है. मैं ये नहीं कहता कि बहुत से लोग प्यारे ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन ओशो की दृष्टि को, पूरी दृष्टि को, एक मिस्ट्री स्कूल जो चाहते थे ओशो, मिस्ट्री स्कूल जिसकी स्थापना करना चाहते थे, जिसमें विभिन्न समाधि का अनुभव किया जाए, जिसमें पास्ट लाइफ और लाइफ बिटवीन लाइफ्स का अनुभव किया जाए, जिसमें हिप्नोसिस पर भी रिसर्च हो, ये सारी बातें आज ओशोधारा में संपन्न हो रही है. तो ये धर्म चक्र, ये जो करीब करीब ओशो के काल में ही रुक गया था, आज ये बहुत ही वेग से शुरू हो चुका है. और तुमको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि तुम सब धन्यभागी हो कि इस धर्म चक्र को चलाने के लिए तुम अंग बन गए हो. केवल दूर से नहीं देख रहे हो, तुम तमाशबीन नहीं हो इस धर्म चक्र को चलाने का. इसमें तुम्हारा भी योगदान है. ये यज्ञ शुरू हुआ है, इस यज्ञ में तुम भी आहुति दे रहे हो. और यह धर्म चक्र 2500 साल तक रुकने वाला नहीं है. लेट्स एक्नॉलेज. अंग्रेज सिंह करनाल, राइट. आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक सुमिरन है. जैसे शरीर की खुराक भोजन है, मन का खुराक मनोरंजन है, ऐसे ही जब तुम डिवाइन रिमेम्बरेंस में जीते हो, गोविंद को जानो और उसके याद में जियो, उसके प्रेम में जियो, उसकी भक्ति में जियो, आत्मा वैसे वैसे सबल होती जाती है, तुम वैसे वैसे आत्मवान हो जाते हो. ओशो कहते हैं ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है. ओंकार से दूर निकलने जाना नरक में प्रवेश, नरक में जाना है. ओंकार की ओर सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना मुक्ति है, संबोधि है. ओंकार ही आत्मा का भोजन है. अगर ओंकार का भोजन तुम नहीं करते हो, ओंकार का सुमिरन नहीं करते हो, तो आत्मा को भूखे मार रहे हो. इसलिए निश्चित एक ओंकार सत्यनाम, यही आत्मा का भोजन है. लेट्स एक्नॉलेज प्लीज. सीमा, कहाँ है सीमा? मेरी 15 वर्ष की बेटी है. किधर? राइट. उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और वो बात भी नहीं मानती है. उसको कैसे पढ़ाया जाए कृपया बताएं. सीमा, वो तुम्हारे कारण पढ़ाई नहीं करती है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो. ये कह करके कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जो गार्जियन बच्चों को ज़्यादा पढ़ो 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 करते हैं, बस वो, तुम उसको ये बोलो कि बेटा ज़्यादा नहीं पढ़ा करते, फिर वो पढ़ा करेगी. मेरे 4 बच्चे, हमने और हमारी पत्नी ने पढ़ लिया, हम दो हमारे दो, हमने अलग पढ़ लिया, पत्नी ने अलग पढ़ लिया, फिर हम दो हमारे चार। तीन तो लड़कियां खूब पढ़ने में मन लगाती थी, खूब अच्छा पढ़ती थी, बेटा केवल खेल में। नाइन्थ क्लास तक वो नीचे से फर्स्ट आता था। पत्नी ने एक दिन कहा कि आप ध्यान नहीं देते हो, लड़का पढ़ता नहीं है। मैंने कहा कि आप ध्यान दे ही रही हो तो मुझे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहे कि ये लड़का, आप कुछ करो, पिता का भी कुछ कर्तव्य होता है। हमने कहा कि आप अपना कर्तव्य छोड़ो तो मैं कुछ कर्तव्य शुरू करूँ, कर्तव्य शुरू करो, आप कर्तव्य छोड़ो तो मैं कर्तव्य शुरू करूँ। पत्नी ने कहा कि ठीक है, आज से हम बिल्कुल नहीं इसे बोलेंगे। हम कि ठीक है। उसको जब खेलने का टाइम हुआ, देखने लगा, क्योंकि माँ के डर से उनके बेटा खेलने का जाने का मन है, जाओ 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 जाओ। वो भी आश्चर्य हुआ कि आज तो बदला बदला सा मौसम है, माँ भी कुछ नहीं बोल रही है। उसके बाद आके शाम को पढ़ने के लिए थोड़ा बैठा, दिखाने के लिए। वो भी मैंने कहा कि बेटे ये तो कोई पढ़ने का टाइम नहीं है, अब हो गया खाने का टाइम, भोजन करो। रात में फिर पढ़ने बैठा, मैंने कहा कि अब तो सोने का टाइम है, ये कोई पढ़ने का टाइम नहीं है। चलो ठीक है। दूसरे दिन फिर खेलने का टाइम आ गया, 4 बजे। उसकी माँ जाने नहीं देती थी 5 बजे के पहले। मैंने कहा बेटा 4 बज गया, खेलने का टाइम हो गया, आप घर में क्या कर रहे हैं, आप जाइए खेलिए। फिर आया शाम को पढ़ने बैठा, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। मैंने कहा कि बेटा थोड़ा सा ये जो 8 बजे खाना पहले खा लो फिर पढ़ना। फिर रात को पढ़ना चाहा, मैंने जाके बत्ती बुझा दी कि ये तो बेटे रात में जग के पढ़ने से आँख खराब होती है। 3 दिन मैंने उसको किताब छूने ही नहीं दिया। 4th दिन उसने माँ से कहा कि माँ पापा को समझाओ, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ और तब ये मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं। और फिर माँ ने उसको कुछ नहीं बोला, बेटा हमको कुछ नहीं करना है तुम्हारे पापा के बीच, हमें कुछ नहीं करना। उस 5वें दिन पहुँचा, पापा मुझे कुर्सी चाहिए और टेबल चाहिए। हम कि किस लिए चाहिए? बोले मुझे पढ़ना है। हम बोले कि पढ़ना तुम्हें, तुम बाज़ार जाओ ये पैसे लो, कुर्सी टेबल लाओ, पढ़ना मुझे नहीं है, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे लिए कुर्सी टेबल खरीदने। वो गया कुर्सी टेबल ला करके और बैठा। और 1 साल में नॉट ओनली ही टॉप्ड बल्कि पूरे छोटे नागपुर में वो फर्स्ट आया। और IBM में जब टेस्ट हुआ अमेरिका में, 4500 लोगों ने अर्जी दी थी, 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ एंड ही टॉप्ड द लिस्ट। जो बच्चा 9th क्लास में अपनी माँ के कारण नीचे से फर्स्ट आता था, वो पिता के कारण ऊपर से फर्स्ट आने लगा। ये बात मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे हैं। मेरी लड़की पढ़ती थी इंजीनियरिंग कॉलेज पटना, मैं चिट्ठी लिखता था कि बेटा गंगा के किनारे तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ज़्यादा पढ़ने लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना, गंगा के किनारे बैठो, नदी लहरों का खेल जरा देखो। वो अपनी चिट्ठी दोस्तों को दिखाती थी। गजब बात है, हम लोगों के पापा मम्मी लिखते बेटा पढ़ाई में मन लगाना, तुम्हारे पापा कहते कि पढ़ाई में ज़्यादा मत समय बर्बाद करना, थोड़ा गंगा के किनारे बैठो, सौभाग्य से गंगा के कि तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये बात समझ लो ठीक से, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और पढ़ने से विरक्ति पैदा कर देता है। दूसरी चीज़, बच्चों को सलाह मत दो। अधिकतर हम बच्चों को सलाह देते हैं, बच्चों से सलाह लो और फिर बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे कभी कोई सलाह नहीं दी, लेकिन पारिवारिक मामलों में मुझसे सलाह ली ज़रूर। इसलिए बचपन से ही मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया, शरारत कर ही नहीं पाया। इतना रिस्पेक्ट मेरे माँ बाप ने मुझे दिया कि अब शरारत आज करता हूँ, कुछ करने का मन करता है, क्योंकि बचपन में करी नहीं, शरारत ही नहीं। अभी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझसे ही सलाह लेते थे तो कुछ भी शरारत नहीं कर पाया। अब वो शरारत जो बचपन में नहीं किया, अब शरारत करता हूँ, तुम लोगों के साथ शरारत करता हूँ। तो एक बात पक्की है कि बच्चों को सलाह देने की जगह बच्चों से सलाह लो, बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेट्स एक्नॉलेज। अंजू किधर है? कहीं दिख ही नहीं रहे। चलो भगवान आपके दर्शन पाकर ये शरीर और आत्मा धन्य हो गए। भगवान किसी जन्म के पुण्य से ओशोधारा से जुड़ गई हूँ। मुझे नेगेटिव विचार कभी आते हैं तो मुझे ध्यान में भी परेशान करते हैं। मैं सुरति समाधि तक कर चुकी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? विचार है तो आकार से नाता है, हर विचार आकार से संबंधित है। कभी निराकार के बारे में विचार नहीं आता, याद रखना। वो सहजो संत हुई कहती है कि बस आदमी के चित्त में आदमी ही रहता है, कुत्ते के चित्त में कुत्ता ही रहता है। तुम सोचते हो कुत्ते आदमी के बारे में सोचते? नहीं सोचते। आदमी आदमी के बारे में परेशान है। एक काम करो, तुम आकाश से नाता जोड़ो। जैसे मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो मुझे आकाश दिखाई देता है और आकाश में तुम भी हो, चलो ठीक है, लेकिन मुझे आकाश ही दिखता है। जो तुम्हारे भीतर जो स्पेस, जिस स्पेस में तुम हो, मुझे वो स्पेस दिखाई पड़ता है। ये और बात है कि अब वो स्पेस स्पेस की तरह नहीं दिखाई देता, गोविंद की तरह दिखाई देता है। धीरे धीरे इस स्पेस, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज ए जर्नी फ्रॉम टाइम टू स्पेस, फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस स्पेस। मेडिटेशन इज ए जर्नी फ्रॉम टाइम टू स्पेस। हम समय में जीते हैं और समय के कारण सब विचार ही विचार, विचार ही विचार। तुमको करना इतना ही है कि समय की जगह आकाश में जीना शुरू कर दो। आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश। और जहाँ आकाश का ख्याल है वहाँ कोई विचार नहीं होता। जहाँ विचार है वहाँ आकाश नहीं होता। जब भी मन में विचार आए तुरंत जाग जाओ, अच्छा आकाश भूल गए थे। चारों तरफ आकाश, भीतर भी आकाश, बाहर भी आकाश। आकाश का ख्याल में जो जीता है उसे विचार परेशान नहीं करता। बस ये कुंजी की तरह, और इसको सूत्र भी बना लो, इसको सोपान भी बना लो। जब भी खोपड़ी चलने लगे, अच्छा आकाश से नाता टूट गया था। अजीब बात है कि मछली पानी में रहती है और पानी में उसको सब दिखाई देता है। एक कीड़ा इधर से उधर जाए मछली टप से उसको पकड़ेगी और देख लेगी, लेकिन आश्चर्य उसको पानी नहीं दिखाई देता। ऐसे ही हम इस परमात्मा के आकाश में रहते हैं और इस आकाश में हमें सब दिखाई देता है। आदमी दिखाई देता है, लेकिन इसी आकाश में आकाश नहीं दिखाई देता। बस आकाश को दिखना शुरू करो। यही तो ध्यान है, यही तो अध्यात्म है और कुछ भी नहीं है। आकाश से जुड़ना अध्यात्म है और समय से जुड़ना संसार है। बस एक छोटा सा सूत्र तुम्हारे जीवन में पूरी क्रांति ला सकता है। लेट्स एक्नॉलेज प्लीज। मनोज किधर? राइट। मैं बैठे बैठे ख्यालों में खो जाता हूँ, मन ही मन बातें करने लग जाता हूँ। कृपया बताएं क्या ये उचित है, और ये गलत है तो मैं इससे बाहर कैसे आऊँ? बस क्योंकि तुम आकाश को भूल जाते हो। जिस आकाश में वायुमंडल है, जिसमें हम सांसें लेते हैं छोड़ते हैं, जहाँ से जीवन सपोर्टेड होता है, जिस आकाश से हम रोशनी पाते हैं, जिस आकाश से हवा, जहाँ से अन्न जल सब कुछ पाते हैं, सारा आकाश ही हमारे जीवन का आधार है, हमारे प्राणों का आधार है। उसको भूल जाते हैं और उसको भूलते ही स्वयं को भूल जाते हैं। याद रखना, अगर आकाश को याद रखोगे तो उसी आकाश में हम हैं, तो स्वयं को नहीं भूल सकते। जो आकाश को नहीं भूल पाता वो स्वयं को भी नहीं भूल पाता, और जो स्वयं को नहीं भूल पाता वो कभी ख्यालों में खोता नहीं, कभी विचार में खोता नहीं। आत्मस्मरण, लेकिन सीधे आत्मस्मरण अगर करना चाहो तो मामला बड़ा प्रयासपूर्ण हो जाता है। लेकिन आकाश का अगर ख्याल हो तो ऑटोमेटिकली तुम पाओगे कि आत्मस्मरण बना रहता है और तुम विस्मरण में नहीं जा पाते हो। तो एक बात कि आकाश का अपना ख्याल रखना है, और अपने ख्याल करने के लिए ज़रूरी है कि अपने चारों तरफ के आकाश सहित अपने को, हम आकाश स्थिर है, हमारे हमें गति है। एक थिर का जब तक ख्याल नहीं होता तब तक हम आत्म विस्मरण में चले जाते हैं। ये जो शाश्वत तत्व से नाता किसी तरह जुड़ जाए तो फिर देखोगे आत्म विस्मरण में हम नहीं पड़ते। और जो शाश्वत तत्व है वो आकाश है। आकाश में गति नहीं, हवा गति करती, आकाश कहाँ गति करता है? आकाश अचल है। तो उस अचल से अगर संबंध बना लो तो आत्म विस्मरण में नहीं जाओगे, आत्मस्मरण सदा बना रहेगा। Let's acknowledge, please. Aries, where is Aries? Right. I am of 11 years and I can't keep connected on myself, and I want to take interest in my studies. Tell me how to overcome my problem. I can't control myself. That's right. बेटे, कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। नाचो, गाओ, खेलो, कूदो, और एक बार ये कला जान लो, अपना ही को याद रखो बस। इसलिए बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, अपना ख्याल रखना। हम लोगों ने क्या समझा कि अपना केयर करना, नहीं, कहीं भी जाओ अपना स्मरण रखो। और अपना स्मरण कैसे रहे? इसी का नाम ध्यान है। आत्मस्मरण ही ध्यान है, आत्मस्मरण ही साक्षी है। तो इसलिए एक काम करो, जरा बालोत्सव प्रज्ञा जब यहाँ 6 दिन होने वाला है उसमें तुम आ जाओ, और उस 6 दिन में हम तुम्हें बताएंगे कि खेलते हुए, कूदते हुए, पढ़ते हुए, चलते हुए अपना ख्याल कैसे बना रहे। और जिस व्यक्ति को अपना स्मरण बना रहता है उसकी याददाश्त बड़ी तेज होती है, वो कुछ भी पढ़ता है वो भूलता नहीं है। फिर आत्मस्मरण में जो जी सकता है उसकी मेमोरी भी बड़ी शार्प हो जाती है। तो आत्मस्मरण की कला जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं आपके 10 ईयर्स प्लस 9 ईयर्स प्लस, वे बच्चे बालोत्सव प्रज्ञा में ज़रूर आ जाएँ 6 दिन। एक तो यहाँ पर कोई ऐसा गंभीर क्लासेस नहीं होंगे, बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, कल्चरल प्रोग्राम करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे 6 दिन के बाद, और साथ साथ हंसी खेल में ही हम उनको बताएंगे कि पढ़ते हुए लिखते हुए कैसे अपने आप को याद रखें। और इतनी छोटी सी बात, उनकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है पढ़ने लिखने में। और तब तक तुमको एक गुरु बता देता हूँ जो ज्ञान मुद्रा कर सकता है। ज्ञान मुद्रा बहुत आसान है, अंगूठा को और तर्जनी को मिला लो। जितने संतों को देखा होगा ज्ञान मुद्रा में वो जीते हैं। ज्ञान मुद्रा कोई रोज़ 1 घंटा कर ले तो उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, उसको विचार नहीं परेशान करते हैं, और अपने पर पूरा नियंत्रण होता है, अपने मन पर पूरा नियंत्रण उसका होता है। तब तक ज्ञान मुद्रा, लेट्स एक्नॉलेज प्लीज। आज का आखिरी सवाल धर्मेंद्र पानीपत, राइट। प्रभु जी, तलाश है कि जिस सरोवर की मुझे, क्या तुम वही हो? जिंदगी को मिलता है जहाँ पर हम विश्राम, क्या तुम वही हो? जिंदगी आहों से भरी है मेरी, क्या मेरी मुस्कुराहट तुम ही हो? मिलती है दर्द दिल की दवा जहाँ, वो मुकाम क्या तुम ही हो? जिंदगी दबी है मेरी वासनाओं के अंधेरों में, क्या किरण रवि की तुम ही हो? तमन्ना जलकर खाक होती है जहाँ, क्या वो आग तुम ही हो? सरिता गिरती है जिस सागर में सदा के लिए, क्या तुम वही हो? तलाश है जिस सदगुरु प्यारे की सदा से, मुझे क्या तुम वही हो? सुनो, एक साधक आया एक संत के पास और उससे कहा कि मेरा गुरु मुझको कैसे मिलेगा। उस संत ने कहा कि सवाल तो कठिन है, लेकिन एक स्फटिक शिला होगी, पीपल का वृक्ष होगा, और लंबी दाढ़ी होगी, केश भी लंबे होंगे, और ऐसा व्यक्ति जहाँ तुमको मिल जाए वही तुम्हारा गुरु है। स्फटिक शिला, भागा, मिल गया, मिल गया। और 12 साल तलाशता रहा सदगुरु को, और तलाशते तलाशते थक गया था, मगर एक दिन देखा, अरे स्फटिक शिला भी है, पीपल का वृक्ष भी है, और एक संत भी बैठा है। और उसने आकर के चरणों पर गिर गया। 12 साल बीत गए, तब आप मिले। और जब आँख उठा करके उसने देखा तो वही व्यक्ति था जो 12 साल पहले था। तो उसने कहा, आप ही थे मेरे गुरु, अरे तो आपने बता क्यों नहीं दिया? संत ने कहा, मैंने तो बताया था, तुमने सुना कहाँ? उसने कहा, लेकिन रोक भी सकते थे मुझे। लेकिन तू इतने ज़्यादा भागम भाग में थे, आपाधापी में थे, कि तुझे रोकता भी तो कैसे रोकता? बोला कि कितना मैं परेशान हूँ, आपको पता है 12 साल में मैं कहाँ गया, कहाँ गया, आपको पता है? उसने कहा, और मेरी भी तो परेशानी सुनो, 12 साल से मैं तुम्हारा इंतज़ार यहीं बैठ के करता रहा कि बंदा कब आ जाए, और क्या पता कि मैं उस समय हूँ न, मैं हिला ही नहीं यहाँ से। तुम तो कम से कम देश देशांतर गए, इतना वहाँ परेशान हो, इतना घूमने फिरने का तो मज़ा लिया, लेकिन मेरा तो देखो कि 12 साल से तो तपस्या करा दी तुम। मेरा ख्याल है तुम इशारा समझ गए होगे। लेट्स एक्नॉलेज प्लीज।